તારીખ 28/1/1984 શ્રી પરમાગમસાર બોલ નંબર 468 અને 469 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 264
जो गाथा है उसके प्रवचन नहीं थे, उस प्रवचन में से ये बोल रहे हैं। गाथा का विषय है आश्रयों से कैसे निवर्तन करना। 472 और 473 दोनों एक ही गाथा के प्रवचन में से हैं। आकुलता और अशांति के कारण आश्रम भाव है, दुख के कारण है, ऐसा जो जानता है वो स्वयं रूप से दुख में रुचि प्रीति नहीं करता है और दुख से रट जाता है। इस दूर में तो इस प्रवचन चलते चलते एक सूक्ष्म विषय और खुला है। ये विषय रूपचंद साहब ने रुचि विलास में खुला है। योग गुरु को अनंत गुरु का रूप है, ऐसा जो विषय है रुचि विलास में दिया है। यहाँ ऐसी बात कही आई है, भगवान आत्मा अनंत गुरु स्वयं प्रभु है। भीतर में जो आत्म तत्व है, देह में विराजमान तत्व है, उसमें अनंत गुण है। और अपना अनंत गुण क्या ऐश्वर्य से विराजमान होने से उसको भगवान और प्रभु कहने में आता है। महामहिमावंत होने से उनकी महिमा के साथ ही बात की जाती है।
क्या कारण से
अनंत गुण निधान है, अनंत अनंत ज्ञान है, अनंत अनंत सुख है, अनंत शांति है, समाधि है, और ऐसे ऐसे अनंत दिव्य गुण है, और एक गुण का सामर्थ्य भी अनंत है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु अपने सत्ता में अनंत गुण से विराजमान है। इसलिए चैतन्य बुद्धि से इनकी महानता है। इसकी महानता क्यों है कि चैतन्य आदि अनंत गुणों की समृद्धि से, समृद्ध होने से उनकी महानता है, महानता होने का ये भी कारण है। फिर भी इसमें सुख और ज्ञान दूसरे में नहीं है। अनंत गुण दूसरे पदार्थ में और सब पदार्थ में होने के बावजूद भी उसमें ज्ञान और सुख नहीं है। और ज्ञान ही सुख में अपना ज्ञान और अपना सुख वो महत्व की बात है। दूसरे की समृद्धि से कोई मतलब नहीं है। अमेरिका में अरबपति है, अपने को क्या लेना देना। लेकिन अपनी झोंपड़ी भी अच्छी हो जाए, अपना आंगन को सुशोभित रखेंगे, भले झोंपड़ी के आगे का आंगन होगा, लेकिन उनको स्वच्छ रखेगा। अपनत्व है वहां, उनकी महिमा है। तो अपना अपने में अपना आनंद गुण समृद्ध अपना पदार्थ है, अपना तत्व है, अपना स्वरूप है। इससे महान चैतन्य सत्ताधारी शाश्वत रहने वाला और कभी भी उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी होती नहीं, हो सकती भी नहीं, होती नहीं और हो सकती भी नहीं, ऐसा अपने स्वरूप से सदाही अव्यापार रूप से रहने वाला अपना भगवान आत्मा है। इच्छित पदार्थ की प्राप्ति हुए ऐसा एक माध्यम है, वो पैसा है इस जगत में, कि जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति की जाती है। तो उस पैसे के पीछे कितनी मजदूरी करता है जीवन में, इसलिए भले ही शांति नहीं मिलती है, भले ही सुख नहीं मिलता है, इससे आकुलता बढ़ती है। जितना भी लक्ष्य जाता है, जितना भी रुचि और प्रेम बढ़ता है संयोग में, आकुलता बढ़ती है। फिर भी कितना समय व्यतीत करता है, कितना समय का भोग देता है, कितनी शक्ति खर्च करता है, झूठी शांति के लिए, कृत्रिम शांति के लिए भी इस जीव को इतना पीछे पड़ना होता है। तो वास्तविक अपना सुख को पहचाने, उस सुख पाने के लिए वो क्या क्या नहीं करेगा, वो क्या क्या नहीं कर सकता है। वो भरत चक्रवर्ती ने छह खंड का त्याग किया, क्या कमी थी उसको, पांच इंद्रियों के सुख के विषय में उसको क्या कमी थी, किस प्रकार की कमी थी। कि मनुष्य के भोग उपभोग के जो विषय हैं, वो सभी प्रकार के उनको प्राप्त थे, फिर भी इससे भी कोई अधिक, जिसका छह खंड का मूल्य कुछ नहीं है, जैसे नाक में से मैल निकाल देते हैं वैसे ही निकाल दिया, ऐसा कौन महत्व वाला पदार्थ होगा, कौन सा महत्व वाला वो सुख होगा कि जिससे वो ऐसा सहज रूप से कर सकते हैं। कोई दुख नहीं हुआ है उसमें, ये रानियां छोड़ी, ये मैल छोड़ा, ये अनेक प्रकार के अनुकूलता के बाह्य साधन छोड़ दिए, उसमें क्या दुख हुआ था उनको, कि तनिक मात्र भी दुख नहीं हुआ था। दुख तो नहीं हुआ था, बल्कि आनंद बहुत हुआ था, आत्मा का आनंद हुआ था इसमें। आत्मा का आनंद के उधार में ये भोग उपभोग प्रति के वर्ण वाले जो परिणाम है उसमें दुख होता था, वो दुख को छोड़ दिया। वास्तव में पदार्थ को नहीं छोड़ा है, पदार्थ तो अन्य क्षेत्र में थे, आत्मा में थे ही नहीं। भरत जी के आत्मा में तो कोई थे नहीं, लेकिन उन्होंने जो छोड़ी वो आकुलता छोड़ी, इस पदार्थ संबंधित जो आकुलता थी वो आकुलता को छोड़ दी, शांति को प्राप्त कर ली,
दुख को छोड़ दिया,
दुख को छोड़ा और सुख को प्राप्त किया। तो वो तो ठीक ही है और उचित ही है, उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। वो अनुभव नहीं होता है, क्योंकि सुख की कल्पना की है, सिर्फ कल्पना ही नहीं की है, निश्चय भी किया है, एक गलत निश्चय कर लिया है। जैसे कोई व्यक्ति संबंधित पूर्वग्रह हो गया हो कि ये तो ऐसा ही है, तो निकलता नहीं है जल्दी। वैसे उन्होंने तो अनादिकाल से निश्चय कर लिया है कि ये पंचेंद्रिय के जो विषय है वो मेरे सुख के कारण है, और अनेक प्रकार के जो अनुकूलता के साधन है, ये सब व्यवस्था जो है वो तो इस प्रकार जुड़ी हुई है मेरे साथ के, बस इससे मुझे सुख है और चैन है, ऐसा एक निश्चय कर लिया है। तो वो निश्चय गलत इसलिए है कि वो सब मिलने पर भी सुख होता नहीं है, सुख का अनुभव होता नहीं है। तो होता है क्या?
नहीं होता है तो
क्या होगा? निश्चय नहीं बदले तो छोड़ता नहीं है, पहले तो वो निश्चय नहीं बदलता है, निश्चय नहीं बदलता है तो छोड़ने का कोई उसके पास विचार ही नहीं चलता है। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने को जगत का जीव उसके पीछे लगता है, किसी को मर्यादा नहीं है कि अब नहीं चाहिए अब नहीं चाहिए, ऐसी तो कोई मर्यादा नहीं। अभिप्राय में सारे जगत की संपत्ति एक जीव को चाहिए, एक जीव के अभिप्राय में सारे जगत की संपत्ति उसको चाहिए, और जगत की सभी प्रकार की आपत्ति का यही कारण है कि सबको चाहिए, चीज एक है और चाहिए सबों को। फिर तो लड़ाई तकरार झंझट मिटने का कोई सवाल रहता नहीं। सारे विश्व में जो युद्ध हुए हैं, घर्षण हुए हैं, इनकी जो परंपरा चली है, इसके पीछे क्या कारण है कि एक चीज है, विश्व एक है और अनेक को वो चाहिए, यही कारण है इसका। यहां तो गुरुदेव श्री भगवान आत्मा का स्वरूप बताते हैं, जैसे श्रीमंत आदमी शादी के वक्त अपने वैभव बताता है कि देखो मैंने बच्ची को इतना दिया, मेरी लड़की को इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, सब सारे जगत को दिखाता है ना, आपके यहाँ तो जुलूस निकलता है इसका, देखा हमने जयपुर में। तो ये गुरुदेव जो है वो आत्मा में रहा हुआ जो समृद्ध संपत्ति है उसको दिखाते हैं। तो शास्त्र में सब आरूढ़ हो गया, गुरुदेव के शब्द शब्द है वो शास्त्र में आरूढ़ हो गया, वैभव दिखाते हैं। आत्मा का आत्म राजा है, चैतन्य राजा है, इसका वैभव दिखाता है। भगवान आत्मा अनंत गुण स्वरूप प्रभु है, उसके एक एक गुण में अनंत अनंत गुण का रूप है, एक गुण में अनंत गुण का रूप है। ये चिड़ीलास में लिया है, सारा प्रकरण लिया है, एक गुण में अनंत गुण का रूप है। एक गुण में सर्व गुणों नो रूप संभवे छे, वस्तु में अनंत गुण है और एक एक गुण में सर्व गुणों का रूप संभवित है। किस प्रकार वो कहते हैं कि जो सत्ता गुण है तो सर्व गुण है, आत्मा में सत्ता गुण है तो उसका रूप सर्वगुण में है। सर्वगुण का हैपना जो है, उसकी जो हयाती की रूपता है, वो सत्ता के सदृश होने से सत्ता गुण का रूप इसमें सत्ता गुण भी है, किसी दूसरे गुण में दूसरा गुण नहीं है। ज्ञान गुण में सत्ता गुण नहीं है, आत्मद्रव्य में सत्ता गुण है और आत्मद्रव्य में ज्ञान गुण है, लेकिन सत्ता गुण में ज्ञान गुण नहीं है और ज्ञान गुण में सत्ता गुण नहीं है, लेकिन दोनों में रूप है एक दूसरे का। ज्ञान में सत्ता की रूपता है और सत्ता में ज्ञान रूप है, चैतन्य सत्ता है वो ज्ञान रूप है। रूप जो है मैंने ऐसा दिखाव, उसका इसका ऐसा दिखाव है, जैसे एक एक व्यक्ति का रूप क्या है कि या तो ये गोरा है या सांवला है या बेडौल है या सुडौल है कि उसका रूप है। ऐसे ज्ञान है उसकी जानने रूप शक्ति है, लेकिन अस्तित्व उसका रूप है, अनाकुल सुख इसका रूप है, आनंद इसका रूप है, ज्ञान का रूप आनंद है। इसलिए तो एक गुण से सारा आत्मा का पता चलता है। ये जो सत्शास्त्र में दिखाया कि एक ज्ञान लक्षण से पूरा आत्मा का निश्चय होता है,
तो पूरा आत्मा तो सर्वगुण संपन्न है, अनंत गुण संपन्न है, तो अनंत गुण संपन्न आत्मा और एक गुण से कैसे पता चले उसका कि एक गुण में अनंत गुण का रूप है। जब पहचान होती है, जब भाव भाषण होता है, निश्चय होता है, स्वरूप का निश्चय होता है ज्ञान से, तब ज्ञान लक्षण में उसका सुख का भी निश्चय हो ही जाता है कि मैं तो सुख स्वरूप हूं, जो ज्ञान स्वरूप हूं वो मैं सुख स्वरूप हूं, और कितना सुख स्वरूप हूं कि अनंत सुख की खानी जो है वो मेरे में पड़ी है, ऐसा पता चलता है। अब विचार ये करना चाहिए कि जब इस जीव की परिणति सुख के लिए अनंत काल से अनंत विषय में भटकती हुई फिरती है, यही सुख की परिणति को सच्चा सुख के खान का पता चले कि इस परिणति को रोकने वाला कौन है इस जगत में, पुरुषार्थ सहज रूप से क्यों उपड़ता है। पहचान होते ही सहज पुरुषार्थ उमड़ता है, क्यों उमड़ता है कि सुख की खान का पता चल गया, अनंत सुख मेरे में भरा है और मेरा स्वाधीन सुख की उपलब्धि मेरे स्वयं से होगी, उसमें मुझे किसी की भी पराधीनता नहीं है। जब ये पता चलता है उसको, तो इसकी परिणति जो है उसको सुखानुभव करने के लिए इस विश्व में कोई रोक नहीं सकता। किसी भी विश्व के किसी भी द्रव्य में और किसी भी भाव में कोई ताकत नहीं है कि इस परिणति को रोक सके। चाहे उपसर्ग परिसर कितना भी हो, मुनिराज क्यों नहीं दिखते, इसका क्या कारण है कि अंदर लबालब जो सुख है उसमें वो लीन है, सुख में पड़े हैं, इसलिए देहादि का भी उनको ध्यान नहीं रहता कि ये ठंडी गर्मी है या नहीं है, या कोई बाहर में प्रतिकूलता भी मनुष्य तिरंजकृत होती है या नहीं होती है, उसका उसको पता ही नहीं चलता। और पता चलता तो वो ज्ञान का अग्नि में जाते ही छूट जाता है कि मैं तो वहां हूं नहीं, बिच्छू करड़ता है जंगल में, मुनिराज को बिच्छू करड़े, ऐसा भयंकर काला बिच्छू हो, बहुत भयंकर बिच्छू, उसकी वेदना बहुत होती है, काला बिच्छू जिसको काटता है बहुत रोम रोम में वेदना होवे, कैसी वेदना हो कि असह्य वेदना हो, ऐसा कहने कहने में आता है।
मुनिराज को क्या है,
मुनिराज को ज्ञान का ज्ञेय है, वो उसको हटाते नहीं, जानते हैं कि वो ऊपर आया शरीर पे चढ़ता है, अभी वो अपना आंकड़ा गिराता है, कुछ भी उसको हटने का भी विचार नहीं आता, न हटाने का विचार आता, विकल्प भी नहीं आता। जानते होते हुए भी तो उसको जानते ही स्वरूप में लीन हो जाते हैं, मैं तो मेरे सुख के उपभोग में चला जाता हूं, और ये जो वेदना आदि असाता का कोई प्रयोग होगा, बिच्छू काटेगा और कोई असाता का उदय होने का कोई उदय प्रयोग होगा, तो ये तो मेरा आनंद का अनुभव का अधिक पुरुषार्थ का एक मौका है, अधिक शुद्धि का और अधिक आनंद के वेदने का एक मुझे अवसर प्रसन्न मिल जाता है, उसमें मैं उससे उसको क्यों हटाऊं। भिन्न ज्ञान में और भिन्न आनंद में चकचूर हो जाते हैं, जैसे कोई नशे में चकचूर होने वाले को कोई मार दे दे तो पता नहीं चले, ऐसे मध्य के नशे में भी ऐसा हो सकता है, तो आनंद के नशे में क्या नहीं हो सकता, ये आत्मानंद के नशे में है।
है
ये सब का मालूम
ज्ञान है। ज्ञान से ही भिन्न होता है और भिन्न नहीं हुआ तो ज्ञान से ही भिन्न हो जाएगा, क्या होगा? ज्ञान से या तो छोटेगा या तो ज्ञान से अलग पड़ जाएगा। वो तो आश्रय स्थान है, वो तो आश्रय स्थान है कि ज्ञान जिसका आश्रय करता है कि मैं ये हूं, लेकिन कार्य तो होगा किससे? परिणाम से कार्य होगा। ध्रुव तो क्रिया से रहित निष्क्रिय बिंब है, जो ध्रुव है वो तो निष्क्रिय चैतन्य बिंब है, वो तो कुछ करता हरता नहीं, अपने स्थान में है मेरु की तरह। जैसा मेरु अपने स्थान में है अचलित, ऐसा अचलित स्वभाव है वो, तो हलन चलन करने वाला नहीं है, क्रिया को करने वाला नहीं है।
आश्रय स्थान
अनंत गुण का समुद्र मिल गया, उसमें वो डूब जाते हैं, अंतरलीन हो जाते हैं, कोई सवाल ही नहीं बाहर में क्या होता है। स्पर्शादि का जैसे कोई पता ही नहीं चलता कि क्या स्पर्श हो रहा है, बीचों काटता है या नहीं काटता है, सिया खाता है शरीर को या नहीं खाता है, कुछ भी करो कोई जैसे पता ही नहीं, जैसे देह का उपयोग ही खत्म हो गया हो। पांच इंद्रिय के फैलाव रहित देह मात्र जिसका परिग्रह है, ऐसा कहा जैसे उपयोग ही नहीं हो, होने के बावजूद भी जैसे नहीं हो, नहीं के बराबर हो जाता है। चैतन्य आनंद में लबालब मस्ती में आ जाते हैं, ऐसे गुरुदेव कहते थे कि जैसे हलवे घी में, हलवा घी में हलाते हैं आप, या तो घी का बहुत खाने का प्रयोग है, लबालब घी का हलवा गर्मा गर्म जैसे कोई ऐसा आनंद का घी इसमें डलता है, और चैतन्य जो है अंदर से ज्ञान का और आनंद का समुन्द्र उछलता है, दरिया डोलता है इसमें सारा का सारा। भाष आवे तो भाष में वो भिन्नता भाषण होती है, मेरा अस्तित्व ही नहीं है यहाँ शरीर। हाँ, आपको ज्ञान में एक 10 लाख की गाड़ी देखने में आई, मेरी वह ऐसा हो गया क्या है? मेरी नहीं, ऐसा जानने में आया रास्ते पे एक गाड़ी पसार होगी, मर्सिडीज 50 लाख की निकली, होगी किसकी, होगी भी किसकी, क्या ज्ञान में है? विकल्प भी नहीं किया कि मेरी नहीं है, जाना ही ऐसा कि मेरी नहीं है, बस वैसा ही वो शरीर को जानते हैं, मेरा अस्तित्व तो नहीं है, विकल्प नहीं करना पड़ता है कि मेरा अस्तित्व नहीं है, कि शरीर मेरा नहीं है, ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता है। उसको भिन्न रूप है वो भिन्न रूप से ही जानते हैं, जड़ को जड़ रूप से जानते हैं, और चैतन्य में बैठे हुए जानते हैं, चैतन्य में बैठकर जानते हैं, चैतन्य का अनुभव करते हुए जानते हैं कि मैं चैतन्य हूं, बस खत्म हो गई बात। ऐसा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं तो लगता है कि ये क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन दृष्टांत से तो समझ सकते हैं कि दूसरे की चीज में रस ही नहीं आता है, चाहे कितनी बड़ी हो कितनी अच्छी हो, आता है रस क्या?
नहीं।
दूसरे की 50 लाख की गाड़ी में रस नहीं आएगा, अपनी साइकिल होगा तो बराबर साफ करेगा उसको दिन में 10 बार, रस आता है उनको, अपनी चीज में रस आता है। ऐसा ही एक बिल्कुल अनुभव को चर चीज है वो तो
नहीं,
वो पर में स्वयं मान लिया इसलिए जाता है, मुफ्त में थोड़ा जाता है, पर में स्वयं माना है इसलिए जाता है, वरना तो नहीं जाएगा किसी बात। और वो कल्पित है, पर रस आता है फिर भी शांति नहीं होती है, तृप्ति रहती है, तृप्ति नहीं होती है, ये बात जरूर है कि नहीं? क्यों नहीं होती है, इसका विचार करना चाहिए कि इतना रस लिया, इतनी कल्पना की कि मुझे बहुत जस्ता है, बहुत अच्छा लगता है, फिर भी तृप्ति क्यों नहीं होती। तो ये भिन्न पदार्थ है वो आत्मा में आने वाले नहीं है, आत्मा में उसका प्रवेश नहीं है, स्पर्श नहीं है। कभी कल्पना कर करके थकता है तो छोड़ देता है, आखिर में क्या एक लड्डू खाया, दो खाया, कितना खाएगा। अब तो नहीं चाहिए, अरे भाई तुझे एक लड्डू में सुख है तो दस लड्डू में दस गुना तो सुख होना चाहिए कम से कम। तो दस गुना क्या, अभी तो दसवां भाग का भी नहीं रहा, उल्टा चला हो तो एक खाया फिर दूसरा खाया तो घटता क्यों गया, बढ़ता जाना है, सुख बढ़ता जाना चाहिए, घटता क्यों जाता है। कि अब तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा क्यों। ये गणित ही है तो वन प्लस वन बराबर दो होता है, दो में दो लगाते तो चार होते हैं, ये गणित ही उल्टा चलता है, इसका क्या कारण है। विचार तो करना चाहिए, बुद्धिमानी जीव को तो बराबर विचार करना चाहिए, ये है क्या करना है। शरीर की कैपेसिटी में भाव क्यों बिगाड़ता है। भाव क्यों बिगाड़ता है, भाव में तो ऐसा नहीं है, हाँ अभी खाओ अभी खाओ, भाव में भी नहीं, अभी तो मुझे को वॉमिट हो जाएगा, अभी तो मुझे चाहिए ही नहीं। पर किसी को ये होता है कि ज्यादा कोई चीज खा लेता है फिर वो कहीं काल तक खाता नहीं, क्या हो गया मुझे, अब खा, हमारे गुजराती में अब खे पड़ी मुझसे, शू कहते हैं वक्त बहु खाधो ने सियाड़ा में उड़ दियो, एक ना बदले पांच छह बटका खवाई गया ने, हमें अब खे पड़ी गयो, हमें तो भाव तो नहीं, शू थी गयु बद्दी कल्पना, सब के सब कल्पना ही कल्पना है। हमारे गुरुदेव तो ये कहते थे कि जिस पदार्थ में तुझे सुख की कल्पना होती है वो तो हम कहते हैं कि तुझे कल्पना होती है, तू तो सच्चा सुख मानता है, तू तो सच्चा सुख मानता है, तो उस पदार्थ को काट काट के देख, कण को भिन्न कर करके देख के तेरा सुख कहाँ, तेरा सुख का दर्शन कोई होता है इसमें, कहाँ लटकता है तेरा सुख कहीं भी। जल रज कण में सुख ही नहीं है तो उनमें से सुख मिले, ये कल्पना ही बेकार है। सत्ता द्वारा सर्व गुणों की सिद्धि हुई, जो सत्ता गुण है तो सर्व गुण है, इसलिए सत्ता द्वारा सर्व गुणों की सिद्धि हुई, जो सूक्ष्मत्व गुण है तो सर्व गुण सूक्ष्म है, जो वस्तुत्व गुण है तो सर्व गुण सामान्य विशेषता सहित है, जो द्रव्यत्व गुण है तो द्रव में द्रव है व्याप है, और जो अगुरु लघुत्व गुण है तो सर्व गुण अगुरु लघु है, जो अबाधित गुण है तो सर्व गुण अबाधित है, जो अमूर्तिक गुण है तो सर्व गुण अमूर्तिक है। इस प्रकार एक के गुण में सर्वगुण का रूप सर्व की सिद्धि का कारण है, एक के गुण सर्वमा है, एक एक गुण का रूप सर्वमा है, और एक एक गुण अन्य सर्व गुण की सिद्धि का कारण है। हाँ वो तो उस शक्ति नहीं है उसमें, लेकिन रूप नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर तो ये सब गुण जड़ हो जाएंगे। जैसे उद्गल के सब गुण जड़ है, वैसे आत्मा का ज्ञान दर्शन के अलावा सब गुण जड़ है क्या, नहीं है, सब गुण जड़ नहीं है, फिर तो सब गुण जड़ हो जाएंगे। लेकिन आंगड़े ही है, इसका मतलब ये है कि जानना देखने का जो कार्य है वो नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति नहीं है, ऐसी बात है। शक्ति दूसरी बात है, रूप दूसरी बात है। इसलिए कहा कि एक गुण में दूसरा गुण नहीं है, क्योंकि गुण तो द्रव्य के आश्रय से रहता है, गुण के आश्रय से कभी नहीं रहता। वो तो परिभाषा आती है, हाँ निर्गुणा गुणा द्रव्याश्रया गुणा हाँ निर्गुणा गुणा, ये सूत्र है। तो द्रव्य के आश्रय से गुण रहता है, गुण के आश्रय से कोई गुण नहीं रहता है। लेकिन एक गुण को सब गुण का रूप होता है। क्यों 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 ऐसा है कि सभी गुण एक ही द्रव्य के है, इसलिए सभी गुण जो है वो एक ही द्रव्य के हैं, इसलिए एक गुण को समो का रूप मिलता है। ऐसा कारण है इसके पीछे। सर्वगुण के संकेत में तो सर्वगुण का प्रादुर्भाव शुद्ध रूप से हो गया, सम्यक दर्शन होने से ही परिणति शुद्ध हुई, परिणाम शुद्ध हुआ, तो उसमें आत्मा के सर्वगुण का परिणमन भी शुद्ध हुआ, आंशिक रूप से, पूरे पूरे नहीं हुए। लेकिन अनंत तो पहले तो शुद्ध परिणमते थे, लेकिन जो अशुद्ध परिणमते थे वो सभी शुद्ध परिणमने लगे। ऐसा यहाँ तो बहुत सूक्ष्म विषय लिया है कि सभी अनंत गुण एक द्रव्य के होने से एक गुण के एक गुण को सभी गुण का ऐसा यहाँ तो बहुत सूक्ष्म विषय लिया है कि सभी अनंत गुण एक द्रव्य के होने से एक गुण के एक गुण को सभी गुण का रूप मिलता है, होता है। ऐसा होता ही है। क्यों ऐसा होता है? एक ही द्रव्य के सब गुण है इसलिए, वरना तो द्रव्य का द्रव्यत्व सिद्ध नहीं होगा। द्रव्य क्या चीज है? कोई गुण से अलग चीज है क्या? द्रव्य कोई गुण से अलग चीज है कि अलग पर्याय तो उनकी व्यक्त अवस्था है। पर्याय जो है वो सारे द्रव्य की व्यक्त अवस्था है, वो उत्पाद रूप है, वो एक अंग है, वो बिल्कुल बाह्य अंग है पदार्थ का। ये जो सारा पदार्थ है उसमें अनंत गुण है, अनंत गुण का जो द्रव्य स्वभाव है, अनंत गुण रूप वो पदार्थ का अंतरंग है, अभंग अंग है, अंतरंग है और अभंग अंग है, और जो पर्याय है वो बाह्य भंग अंग है। तो भंग भेद वाला अंग है, उसमें भंग पड़ता है, व्यतिरेक होता है, एक पीछे एक पीछे, एक में दूसरा नहीं, एक में दूसरा नहीं, अन्वय नहीं है। अन्वय पर्याय में तो अन्वय सारा द्रव्य रूप से जो अन्वय है वो तो द्रव्य है, पर्याय में जो अन्वय है वो द्रव्य है। अन्वय और पर्याय है तो व्यतिरेक रूप है, एक में दूसरे का अभाव है, ऐसा भाव है कि जिसमें एक में दूसरे का अभाव है। ये द्रव्य नहीं, वो बड़ा सूक्ष्म। एक एक पर्याय व्यक्त होती है, वो एक पीछे ही एक होती है, दो एक काल में कभी नहीं होता, एक काल में कभी दो नहीं हो सकती है।
अनंत गुण होने से सब गुणों की अनंत पर्याय एक साथ होती है, एक
हाँ अनंत गुणों की एक साथ होती है, फिर भी एक समय में जो होती है वो दूसरे समय में कभी नहीं रहती, बिल्कुल भिन्न भिन्न है, व्यतिरेक है। और अनंत गुण है वो एक साथ एक द्रव्य में अभेद रहते हैं। एक एक गुण में द्रव्य गुण पर्याय त्रणय साध्य साधते हैं, एक एक गुण में द्रव्य गुण पर्याय तीनों को साधते हैं। जैसे ज्ञान गुण है, उसका ज्ञान रूप तो द्रव्य है, एक गुण में उसका द्रव्यत्व लेते हैं कि ज्ञान रूप तो उसका द्रव्य है, और जानपना का जो लक्षण है, शक्ति है, वो गुण है, और उसकी जो परिणति है वो पर्याय है, और आकृति है वो व्यंजन पर्याय है, मनुष्य आकार जैसे हो, और जानने का जो प्रगट उपयोग है वो उसका अर्थ पर्याय है,
आकृति है वो जिन जिन पर्याय है कुछ प्रश्न करते हैं कि जो परिणति है वो पर्याय है, पर ज्ञान ज्ञेय विषय पर्याय ज्ञान ज्ञेयो विषय पर्याय बड़े आया है तो परिणति तो नाई तो पर्याय पर्याय बड़े ज्ञान ज्ञेयो वहां कैसे आया वो दूसरा विषय ले लिया है फिर तो बहुत लंबा है। मूल बात जो है पहले पैराग्राफ में रख दी है जो अपना विषय चलता है वो तो रख दिया। ये बहुत सूक्ष्म ग्रंथ है छोटा ग्रंथ है द्रव्यायन युग का बहुत सूक्ष्म विषय सिद्धांत बहुत सूक्ष्म सिद्धांत रखे हैं। क्या कहते हैं इधर कि एक समय में अनंत अनंत गुणों के सागर प्रभु है, सागर की उपमा भी छोटी पड़ती है क्योंकि सागर को भी पांच छह मिल जाते हैं भीतर में तो उसका अंत आता है, नीचे जमीन आ जाती है। कोई समुद्र जो है अपने यहाँ जो समुद्र है ये लवण समुद्र की बात करते हैं तो जो बड़ा का बड़ा महासागर है अटलांटिक है पैसिफिक है ना मिलता क्या वो साढ़े पांच छह मील से ज्यादा उड़ानी है। पर ये जो गुण है ये गुण का जो समुद्र आत्मा है उसको तो कोई तड़ियाई नहीं है, नीचे कोई जमीन ही नहीं है, अंत ही नहीं आता है, ऐसा ऊंडा समुद्र है ये समुद्र तो इसके बाद कुछ नहीं है, उसकी उपमा भी छोटी पड़ती है। एक समय में अनंत अनंत गुणों का सागर प्रभु है और ये सागर है वो बिना अंत का सागर है, अनंत सागर है ये
सागर तो समुद्र का
है।
हाँ।
वो भी छोटा है, वो तो अंत वाला है, वो तो संख्यात में आया सब असंख्य वर्ष में आता है, फिर भी वो मर्यादित तो हो ही गया,
अनंत नहीं है,
अनंत नहीं है। उसका एक एक गुण में उसका अनंता अनंता गुणों का रूप है, उसका प्रत्येक गुण में एक एक गुण में मैंने उसके प्रत्येक गुण में उसके अनंत अनंत गुणों का रूप है, एक गुण को अनंत गुण का रूप मिलता है, एक गुण दूसरे गुण में नहीं और एक गुण है वो दूसरे गुण में नहीं है और एक गुण है वो दूसरा गुण रूप भी नहीं है। ज्ञान गुण अनादि अनंत ज्ञान गुण रूप ही रहता है, आनंद गुण अनादि अनंत आनंद गुण रूप ही रहता है, कभी आनंद गुण ज्ञान रूप होता नहीं और ज्ञान आनंद रूप होता नहीं, गुण अपना स्वरूप छोड़ के दूसरे गुण रूप हो जाता नहीं, लेकिन अनंत गुण का रूप उसको मिलता है, अपना स्वरूप नहीं बदलता है फिर भी उसका स्वरूप में अनंत गुण का रूप है, ऐसा है। एक गुण दूसरे गुण में नहीं है फिर भी एक गुण में एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, एक गुण दूसरे गुण में नहीं है फिर भी प्रत्येक गुण का रूप दूसरे गुण में है।
रूप लेकर क्या लेना, एक गुण
को
दूसरा गुण का
रूप पकड़ो, ज्ञान है,
ज्ञान है आया
तो ज्ञान को हयाति का रूप है कि नहीं है, सत्ता का रूप मिला कि नहीं हुआ है, नहीं मिला उसको, ज्ञान को सत्ता का रूप है, शक्ति जानने की है फिर भी उसको सत्ता का रूप है,
की विलास में तो ये अधिकार लिया है, सारा अधिकार लिया है।
भाई सब पंडित होता है वो राजस्थान में पंडित की खान है,
ये हमारे हुआ है तो हमारे पंडित जी ही और बहुत साल के बहुत साल के पहले आपके आपके मंदिर जी में गांव सिटी के मंदिर जी में स्वाध्याय कराते थे। एक बात तो जरूर है कि राजस्थान में ज्ञानी पंडित बहुत हुए पिछले सालों में, कम से कम 300-400 साल का इतिहास ले लिया तो उसमें ज्ञानी पंडित बहुत हुए। अपने शोभा में जो भी राजस्थान में ही पाके वहाँ का पानी कोई ऐसा ताकत वाला है क्या बात है, बनारसी बात हुए, दौलत राम जी हुए, कौदर जी हुए, दीपचंद जी हुए, राजमन जी हुए, दीपचंद जी राजमन जी कुछ अपने ये हुए, गोचंद जी हुए, भागचंद जी हुए, गणदास जी क्षुल्लक हुए, बहुत है ज्ञानराय जी हुए, बहुत इतने गुजरात में लेकिन क्या हम गुजराती है, हम गुजराती है या हम राजस्थानी है, कौन है हम?
कौन है
हम तो आत्मा है, न हम गुजराती है न हम राजस्थानी, हम तो आत्मा है। तो ये भी जो हुए हैं वो सब हमारी जाति के थे, ऐसे तो सभी आत्मा हमारी जाति के ही हैं, पूरे के पूरे सब साधर्म अनंत अनंत आत्माएं हैं, सब साधर्म साधर्म समान धर्म वाले हैं, वो सब साधर्म है। साधर्म क्या क्या अर्थ है? सब में चैतन्य धर्म है, समान धर्म है, जिन सोई ये आत्मा अन्य हो इसको कर्म। ये गुजरात और राजस्थान तो कर्म प्रसंग से है, ये कर्म के उदय से कुल धर्म कुल हो जो क्षेत्र हो भाषा हो जाति हो जो भी है वो तो कर्म प्रसंग है, अन्य हो इसको कर्म, ये तो सब कर्म है। बहुत उनका तो जबरदस्त काम है, दीपचंद जी का जो काम है एक एक ग्रंथ का, अनुभव प्रकाश, अनुभव का ही प्रकाश किया, एक ही विषय को सारे ग्रंथ में दिया, जिस अनुभव को भाषा में व्यक्त करना बहुत कठिन है, ऐसा अरूपी अनुभव है, ऐसा सूक्ष्म भाव से भरा हुआ है, इसको विकल्प में जो आता नहीं वो तो विकल्प से ज्यादा स्थूल है, ऐसी भाषा गोचर किया है, कितना सामर्थ्य है उनका, बहुत बातें। किंतु व्यवहार रत्न त्रय का राग वो आत्मा का कोई गुण नहीं, क्या कहते हैं द्रव्यानुयोग में से गुरुदेव अध्यात्म में सरकते हैं, एक ऐसे विषय में वो चलते हैं अपने प्रवचन में, ऐसा कोई द्रव्यानुयोग का सूक्ष्म विषय द्रव्यगुण पर्याय का चलता है तो साथ ही साथ वो अध्यात्म का विषय भी रहता है, जो आगम और अध्यात्म आया आगम का विषय से आगे बढ़ के अध्यात्म में आते हैं। कि अनंत गुण का रूप एक गुण को भले ही मिलता है होता है, फिर भी व्यवहार तरह का राग ऐसा कोई गुण आत्मा में नहीं है, जो राग जिनोक्त व्यवहार में समाविष्ट है, जिनोक्त व्यवहार जिसको कहते हैं व्यवहार रत्न त्रय मैंने जिनोक्त व्यवहार, मुनिराज जो है पंचमहावृत समिति युक्ति 28 मूल गुण का पालन करता है, श्रावक जो है 11 प्रतिमा का पालन करता है, बाद में जो विकल्प पैदा होता है, ऐसा जो जिनोक्त व्यवहार, ऐसा परिणाम हुए, ऐसा आत्मा में कोई गुण नहीं है, और ऐसा गुण नहीं होने से अरिहंत और सिद्ध परमात्मा का ये सब प्रकार के परिणाम विनष्ट हो गए। अगर गुण होते तो विनष्ट होते
नहीं,
गुण का नाश नहीं हो सकता। अगर ये गुण होते तो सिद्ध परमात्मा भी इसका पालन करते रहते, लेकिन अरिहंतों और सिद्धों को इस प्रकार का परिणाम देखने में नहीं आता। किंतु व्यवहार रत्न त्रय का राग ये आत्मा का कोई गुण नहीं, तथा राग का रूप कोई गुण में नहीं, इसलिए किसी भी गुण को राग का रूप नहीं मिलता। ज्ञान को सत्ता का रूप मिलता है, ज्ञान को आनंद का रूप मिलता है, लेकिन किसी ज्ञान को या किसी गुण को राग का रूप
नहीं
मिलता। कैसा अध्यात्म ने डाल दिया सारी बात को, कि जिस राग से तेरा नाता तू छोड़ता नहीं है, जिस राग को तू छोड़ता नहीं है, तो तेरा गुण ही नहीं है, तेरा स्वरूप में नहीं है कोई ऐसा गुण नहीं है। अनंत गुण है, लेकिन ऐसा एक भी गुण नहीं है। राजमन जी ने वो बात लिया कि आत्मा में अनंत गुण है, तो कोई ऐसा भी गुण होगा कि जिससे वो राग करे और परद्रव्य का भी कार्य कर सके, ऐसा भी कोई गुण होगा कि नहीं? ऐसा कोई गुण
नहीं है,
नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा राग का कारण नहीं, इसलिए भगवान आत्मा में राग करने का कोई गुण नहीं होने से, स्वभाव नहीं होने से आत्मा राग का कारण नहीं। राग का कारण न स्वद्रव्य है, न राग का कारण परद्रव्य है। ऐसा स्वयं त्रिशंकु की तरह उंधा एक परिणाम है जीव का। ऐसा उनको
होता है राग,
बस ये होता है। क्यों होता है? कि वो राग के कारण राग होता है बस। की योग्यता खान मान कुछ नहीं है उसमें, अज्ञान ही उसकी खान है। वो तो जवाब दिया है कि अज्ञान उसकी खान है। कौन सी खान है? कि अज्ञान उसकी खान है। ऐसा है, वितरागता में तो यही बात है कि तत् समय की योग्यता है, न स्वद्रव्य कारण है न परद्रव्य कारण है। बस फिर जो राग है, राग क्यों मरता है? भगवान को राग नहीं रहा, क्योंकि उनका राग मर गया। क्यों राग मर गया और वितराग हो गए? तो न उनको स्वद्रव्य का आधार मिला, न उनको परद्रव्य का आधार मिला। वैसे तो परद्रव्य का आधार तो था ही ना, वो तो जीव के परिणाम में पैदा होता था और जीव उनको सपोर्ट करता था, इस दुष्ट को सपोर्ट करता था, इसलिए वो जीता था। व्यवहार में भी क्या होता है, ये जो बड़े बड़े नेता है वो दुष्ट कार्य क्यों कर सकता है? क्यों? उनके सपोर्टर बहुत हैं, वोट ले जाते हैं। दुष्ट को भी सपोर्ट मिलता है तो वो जी सकता है। ऐसे ये राग जो दुष्ट है उसको खुद ही आधार देता था कि ये मैंने किया, ये तो मैं करूंगा, मेरा कर्तव्य है, मैं प्रतिपालन करूंगा उसका, बराबर करते रहूंगा मैं। और मैं कहां उतराग हुआ हूं कि मैं नहीं करूं, मैं तो अभी तो रागी तो हूं। ऐसा कर लेता है। अरे भाई तू वितराग नहीं है, लेकिन है तो सही वितराग, वितराग नहीं है क्या? तो ऐसा सोच लें कि वितराग होने पर भी तो राग क्यों करता है? राग को चलाने के लिए और जिताने के लिए और जिंदा रखने के लिए तो ऐसा करता है कि मैं तो वितराग नहीं हुआ हूं, इसलिए मुझे तो राग हो गई हो, इसमें क्या हो गया? ऐसा तो तुम मर जाएगा, उसमें तो तेरा पत्ता लगेगा, कहां जाएगा? क्या ये व्यवहार पत्र में नहीं आता शास्त्र के?
तत्व का प्रचार प्रसार प्रवचन शास्त्र प्रकाशन ये कोई व्यवहार 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 के भाव में नहीं आता क्या? ये सब व्यवहार के परिणाम है। अकेला व्रत नियम संयम कोई व्यवहार के परिणाम है ऐसे नहीं, सब व्यवहार के परिणाम। ये शास्त्र भक्ति है, शास्त्र प्रचार प्रकाशन वो शास्त्र भक्ति है, गुरु की भक्ति है, देव की भक्ति है, देव गुरु शास्त्र की भक्ति व्यवहार है।
वो जो
है क्या कपड़ा उतारना है यार कोई सब चीज का है तो दुष्ट है अनिष्ट है और आत्मा के घातक है। तीन शब्द लिया है राजमल जी ने, 108 नंबर के कलश में कहे हैं। आपको तो खोलना ही है तो फिर खोलो। प्रचार तुम कर ही नहीं सकता, नहीं कर रहा क्या? कर ही नहीं सकता, करने का अभिमान करता है। ये तो होता है, कर नहीं सकता होता है, होता है उसको करता है ऐसा कहना, कोई कर नहीं सकता। यहाँ कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण रूप चारित्र है वो करने योग्य भी नहीं, वैसे छोड़ने योग्य भी नहीं, ऐसा कोई आशंका करेगा कि ये व्यवहार आचरण रूप चारित्र है वो करने योग्य आप नहीं है क्योंकि राग है ऐसा को कहते हैं, फिर छोड़ो भी मत, छोड़ने योग्य भी नहीं है क्योंकि छोड़ोगे तो अशुभ में चले जाओगे। उत्तर ऐसा है कि वर्जने योग्य है, छोड़ने योग्य है। देखो क्योंकि व्यवहार चारित्र होता थका दुष्ट है अनिष्ट है घातक है, विषय कषाय की तरह क्रिया रूप चारित्र निषिद्ध है। देखो जैसे विषय कषाय निषिद्ध है, ये तो 250 वर्ष पहले महान दिगंबर पंडित हुए जिसकी प्रेरणा से बनारसी दास जी को नाटक समाचार लिखने की वृत्ति हुई। ये बहुत अध्यात्म के जबरदस्त पंडित हो गए। सारी कलष्टिका का जो ग्रंथ है पूरा अध्यात्म भरा है। वो किसका अर्थ करते हैं कि आचार्य देव का एक शब्द पड़ा है कि तत् निषिद्धते, तो उसका निषेध करना चाहिए, उसका अर्थ चलता है। तत् निषिद्धते को क्यों तत् निषिद्धते कि मोक्ष हेतु तिरोधाई भावात्, मोक्ष का कारण रूप जो भाव है शुद्ध रत्न त्रय उसका तिरोधान करना ना होने से, उसका विरोध करना ना होने से उसका निषेध करना चाहिए, ऐसा लिया है। ये पुण्य पाप अधिकार का श्लोक है 108 नंबर का, और बंध का हेतु है इसकी, इसलिए उसका निषेध करना चाहिए। खुद बंध का हेतु है और खुद जो मोक्ष का कारण है उसका विरोध करने वाला है। जैसे विषय कषाय के परिणाम में ऐसा दुर्गुण है इसलिए वो दुष्ट है, दुष्ट मैंने जो अच्छा नहीं कार्य करता, बुरा कार्य करता है इसलिए उसको दुष्ट कहते हैं। वैसे ही व्यवहार चारित्र व्यवहार भाव है वैसे है क्योंकि बंध के कारण है। बंधत्वात् स्वयमेव च, स्वयमेव बंध का बंध का कारण होने से ऐसा लिया है, इसलिए तत् निषिद्धते उसका निषेध करने में आया है। अध्यात्म शास्त्र में उनका निषेध करने में आया है। श्लोक के उपोद्घात की टीका में ये बात किया है।
ज्ञानी पर व्यवहार पाए थे।
ज्ञानी व्यवहार पालते हैं ऐसा कहने में आता है, वो व्यवहार को छोड़ते जाते छोड़ते छोड़ते सिद्धालय में चले जाते हैं। देखने का दृष्टिकोण अलग है, तो पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति में अंत थाए निज स्वरूप में लीन लो। श्रीमद राजचंद्र जी व्यवहार की बात चाली सके, संयमना हेतु थी योग प्रवर्तना, जो कोई मन वचन कायाना योग है एनी संयमना हेतु थी एनी जी प्रवृत्ति है, तो पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति में लीधु से कि नहीं लीधु, घटती जाती स्थिति में लीधु से गमे क्यांथी जो कहीं से भी देखो ज्ञानी का एक ही अभिप्राय निकलेगा, दूसरा अभिप्राय नहीं निकलेगा। इसलिए भगवान आत्मा राग का कारण नहीं है कि राग स्वयं के आनंद की पर्याय का कारण नहीं, राग का कारण नहीं और राग और मैंने अथवा वा ऐसा करके राग भी स्वयं के आनंद की पर्याय का कारण नहीं। स्वयं को आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, ऐसा जो प्रयोजन है वो प्रयोजन का कारण राग कभी नहीं, वो स्वयं दुख रूप है, स्वयं आकुलता रूप है, वर्तमान में प्रत्यक्ष ही आकुलता रूप है और भविष्य में आकुलता का ही कारण है, इसलिए राग आनंद का कारण कभी हो सकता नहीं। जिसको सुख चाहिए न जिसको आनंद चाहिए उसको राग का करने का और राग में रहने का व्यामोह छोड़ देना चाहिए, ये बात है। इसमें सारांश निकलता है,
जय हो सनातन दिगंबर, जय धर्मनो, जय हो।